तो बापू कहते हैं, गुरु कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वही अपना है। मम्मी तो मेरी है ना, तो मम्मी बेचारी कब तक रहेगी और मम्मी का बेटा कब तक रहेगा। बेटा जान ले मैं कौन हूं, मम्मी जान ले मैं कौन हूं, तो फिर सदा मिले मिलाए हैं। बाकी शरीर से मम्मी सदा नहीं रहेगी, अब मामा भी नहीं रहेगा, तो शरीर से एक दूसरे के साथ कौन कब रहा। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी लीला समेट रहे हैं, यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो रहे हैं, कृष्ण भी विदाई की लीला कर रहे हैं। तो उद्धव ने श्री कृष्ण के आगे गंभीरता से कहा कि आप अब इस पृथ्वी से विदाई ले रहे हैं, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, मुझे साथ ले चलो। उद्धव कोई साधारण नहीं था, बाल्यकाल में मां बोलती बेटा कलेवा कर लो, बोले मां मैंने अभी पूजा पूरी नहीं किया, मैं पूजा करके फिर कलेवा करूंगा, नाश्ता करूंगा। कलेवा नाश्ते को बोलते। और बृहस्पति से तो विद्या सीखी थी उद्धव ने, और श्री कृष्ण का खास मित्र था सुदामा, उद्धव खास भक्त थे, शास्त्रों के जानकार थे। और जब कृष्ण जा रहे थे तो उद्धव बोलते अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, मुझे आप साथ में ले चलो। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव साथ में कोई आया नहीं, कोई जाएगा नहीं, लेकिन मैं जो आत्म रूप से सभी जगह साथ में हूं उसका तुम श्रवण करो। तो जो साथ में रहता है वो अपना आपा है, वही सत है, वही चित्त है, वही आनंद रूप है, वही सबको कर्षित आकर्षित आनंदित करता है, उसी का नाम कृष्ण है। ये मेरी आकृति वाला शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो नित्य हूं तुम्हारे साथ। तुम बद्री का आश्रम जाकर ये जो ज्ञान दिया उसको मनन करके पक्का कर लो, फिर तुम मेरे से कभी नहीं बिछड़ोगे। तो वास्तव में आत्मा से कभी कोई बिछड़ नहीं सकता, और शरीर से कोई सदा साथ में रह नहीं सकते, चाहे कितने भी प्रयत्न करो। न मां के साथ रह सकते, न पत्नी के साथ रह सकते, कभी न कभी छूटना है। और आत्मा को तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो जो आत्मा है, उस आत्मा मना मैं अपना आपा, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो आत्मा है। व्याप रहा है तो परमात्मा है, और अपने अंतःकरण में है तो आत्मा है। तो उद्धव को दूसरी बात भगवान ने कही कि तुम दृढ़ अभ्यास करके अपने जीव भाव को काट डालो। जीने की इच्छा हुई तब जीव भाव थोपा गया है, जीव वास्तविक में नहीं है। जीव को क्या देखा, किसी ने देखा है क्या? सुन सुन के मान लिया, जीने की इच्छा हुई तो नाम रख दिया जीव। वास्तव में चैतन्य का पूर्णा ही जीव है। चैतन्य अपने को शुद्ध रूप में देखे तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो अभ्यास से, अब तीक्ष्ण अभ्यास के कोलाड़ी से जीव भाव को काट दो, फिर मैं ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, उस वृत्ति को भी छोड़कर अपने आप में शांति पाओ। एवं गुरु उपासना एक भक्त विद्या, कुठारेण शीतेन धीरः, श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने कहा उद्धव को। गुरु उपासना से, एक भक्त विद्या से, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि से जीव भाव को काट दो। जैसे दुखी हूं बेवकूफी की बात है, मेरा कोई नहीं ये बेवकूफी की बात है। मैं चैतन्य हूं, सारा ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरा श्वास समष्टि का श्वास है, श्वास से भी मैं सबसे मिला हूं, धरती के हिसाब से भी मैं सबसे मिला हूं, आकाश के हिसाब से भी मैं सबसे मिला हूं। लेकिन शरीर को मानकर कल्पना करके मेरा कोई नहीं है, तो सब हमारे, नहीं तो कोई हमारा नहीं। तो ये आसक्ति और जिससे दुख पैदा हो, घबराहट पैदा हो, ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। जिससे संसार का आकर्षण पैदा हो, ऐसे विचार न करें न सुने। जिसे भगवान का ज्ञान मिले, भगवान में विश्रांति मिले, भगवान में प्रीति हो, उसका दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए। उपदेशक बनना, सुधारक बनना, बड़ा आदमी बनना, ये सब ईश्वर से दूर ले जाता है। बड़ा बनने की कोशिश न करो, वास्तव में बड़े में बड़ा है उसमें अपना असली संबंध जान लो। बस सुमरण करते करते शांत सुमरण ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। सुमरण करते करते निसंकल्प अवस्था, भले आधे मिनट की हो, फिर थोड़ा सुमरण, फिर शांत। नींद न आए, कल्पना में न जाए, इसलिए बीच में ओमकार मंत्र जो है भी किया, ऐसा घर में दृढ़ता से अभ्यास करो, फिर ये बाहर की ज्योत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ज्योति जलवा के जाते हैं वो भी आखिर तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आत्म ज्योति ही सार है। सूरज चंद्रमा दिया ये बाहर की ज्योति है, उसको देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए। नेत्र ठीक देखते कि नहीं देखते उसमें मन ज्योति चाहिए। मन हमारा ठीक है कि नहीं है उसमें बुद्धि रूपी ज्योति चाहिए। बुद्धि हमारी कैसी है उसको जानने में आत्म रूपी ज्योति चाहिए। वो आत्म तो ये और सारी ज्योतियां एक दूसरे के अधीन है, लेकिन आखिरी ज्योति जो है ज्ञान स्वरूप चैतन्य, वो स्वतंत्र है। सब उसी से एक दूसरे को देकर ले, एक उसी से सत्ता लेकर एक दूसरे को देते हैं, लेकिन वो स्वयं प्रकाश है। वो ज्योति स्वयं प्रकाश है। ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति तमसा परम उच्यते। मैं ज्योतियों का ज्योति हूं और अंधकार से परे हूं, न जानने को भी जानता हूं, रात को कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं देखने को भी जानता हूं। ज्ञान अज्ञान भी, ज्ञान भी मुझसे प्रकाशित होता है, अज्ञान भी मुझी से प्रकाशित होता है। दुख को भी मैं जानता हूं और सुख को भी मैं जानता हूं, और दुख सुख दोनों नहीं है उस अवस्था को भी मैं जानता हूं। तो मैं ही ज्योतियों का ज्योति हूं। जैसे कृष्ण बोलते हैं मैं ज्योतियों का ज्योति हूं, ऐसा ही जीव भाव नष्ट होने के बाद पता चलेगा मैं ही ज्योतियों का ज्योति हूं। और इतने शरीर में नहीं हूं, व्यापक आकाश से भी ज्यादा व्याप्त हूं, आकाश भी मुझ में है। जैसे एक डोम आकाश में दिखता है, डोम के अंदर भी आकाश है, लेकिन महाकाश में डोम दिखता है, ऐसे मुझ चिदाकाश में ये आकाश भी डोम की नहीं है, जिसमें आकाश गंगाएं हैं, सूर्य लोक है, अग्नि लोक है, 4 करोड़ जहां आकाश गंगा में सूरज है विज्ञानियों के, वही अग्नि लोक है शास्त्र में। वासना को पूरी करने में तो जिंदगियां बदल जाएगी, वासना मिटा के निर्वासनिक होकर परमात्मा को पाना है। इसीलिए श्री औद्धव के साथ रहे, कृष्ण के साथ औद्धव रहे, फिर भी श्री कृष्ण जा रहे तो उद्धव विवल हो रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा जाओ बद्रिका आश्रम एकांत में, मुझे अंतरात्मा से मिलो। ये कितनी ऊंची चीज है। अब आगे लोग इस चीज को महत्व नहीं देते, या तो शरीर का चिंतन करेंगे, या तो राग द्वेष का चिंतन करेंगे, या तो मैंने ये दुख देखा, मैंने वो दुख देखा, ऐसे करके भूतकाल का चिंतन करके भूत की नाई रोते फिरेंगे। अरे मनुष्य जीवन मिला है, अब आगे जल्दी से पार हो जाओ, न जाने किस समय दम निकल जाए, फिर कौन सी योनि में जाके भटकेंगे। इसलिए मन को खबरदार करो। मेरे गुरुदेव ध्यान साधन भजन करते, कभी मन में इधर उधर के बीच आ रहे थे तो कान पकड़ के अपने को तमाचे मारते थे, और मैं भी कभी कभी अपने आप की पिटाई करता था। सावधान होना चाहिए। जिसके पाप जोरदार होते वो गुरु के सामने नहीं आ सकता, आंख नहीं मिला सकता। चोरी छुपी आए, चोरी छुपी गए, तो ऐसा तो वरी क्या तुम्हारे जीवन में। अपना कर्तव्य पाले, शास्त्रीय ढंग से अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सुविधा मिले तो मनमुख नहीं होना चाहिए, तबाही के रास्ते नहीं जाना चाहिए। जिसको जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक कोई न कोई उसको पहने वाला नहीं है, नियंत्रक नहीं है, तो वो आदमी अभागा है। उसका विकास नहीं, विनाश की तरफ है यात्रा।
हे राम जी, जिसकी आत्म चिंतना में रुचि नहीं वे तो महाअभागी हैं।
हाँ, जिसकी आत्म चिंतना में रुचि नहीं है, आत्मा परमात्मा को पाने में रुचि नहीं है और भटकने की रुचि, तो वो महाअभागे हैं, वो नालत के अधिकारी हैं, पूजने योग्य नहीं है, नालत के योग्य हैं।
ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पाएंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे।
हाँ, क्या क्या कष्ट पाएंगे, जन्म मरण के बंधनों में फंसेंगे।
हे राम जी, जीव रूपी बैल अनेक रूपी आशा रूपी फांसियों से बंधा है।
ये जीव रूपी बैल आशाओं की फांसी से बंधा है, तो आशाएं वासनाएं काटनी चाहिए, आशाओं का राम होना चाहिए, कि बुढ़ापे में घूमने की आशा वासना जगाना। खुद तो मनमुख हुए और दूसरों को भी तबाह कर रहे हैं।
मोह संसार रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगा है और ऊपर से अज्ञान रूपी तप्तता से जलता है। संत जन और सत्य शास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाता।
संत जन और सत्य शास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाते, जैसा मन में आता है ऐसे करते हैं, उनकी बड़ी नीच गति होगी।
हे राम जी, यदि संत जन और सत्य शास्त्र रूपी वृक्ष की छाया में आए तो शांति को पाएगा। महापुरुष और संत जन मल्लाह हैं, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे
महापुरुष कल्प वृक्ष है, उनका युक्ति रूपी जहाज है, वो युक्ति से तार देते हैं। लोग रो रहे थे तो वो संत ने जाकर कहा कि तुम लोग क्यों रोते हो, ये आदमी जिंदा है कि मर गया? तो लोग हैरान हो गए, रोने वालों को भी आश्चर्य लगा कि इतने बड़े संत, लाश पड़ी है और सब रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आदमी जिंदा है कि मर गया। बोलिए, आप कैसा सवाल कर रहे हैं, हम लोग सब रो रहे हैं और लाश सामने पड़ी है और आप बोलते हो ये जिंदा है कि मर गया। गुरु जी ने कहा, हाँ मैं पूछता हूं कि ये जिंदा है कि मर गया। बोले, तो लाश पड़ी है। बोले, लाश तो पहले भी लाश थी, जो जिंदा है वो अभी भी जिंदा है, जो जिंदा है वो अभी भी जिंदा है, और ये लाश तो पहले भी लाश ही थी, जिंदे की लाश के साथ मुलाकात थी तो चल रहा था, जिंदा अलग हो गया तो लाश लाश दिख रही है, इसमें मरा क्या है। संबंध छूटा है, इंजन अपनी जगह पे है और ड्राइवर अपनी जगह पे है, गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है और ड्राइवर अलग है, इसलिए गाड़ी मरी हुई लगती है। तो शरीर तो है यंत्र और आत्मा तो है अमर, तो शरीर है यंत्र, आत्मा है अमर, तुम बताओ कौन मरा? यंत्र यहां पड़ा है और आत्मा अमर है, मरा कौन? और जिंदा क्या हुआ? जिंदा तो था ही और वो अभी भी जीवित है, वो तुमको हमको सबको देख रहा है। जो जिंदा है वो जिंदा है और जो मुर्दा है वो मुर्दा है। तुम रोते हो तो इस बात को रो कि तुम अभी तक ये रहस्य नहीं समझ पाए कि जो जिंदा है वो जिंदा है और जो मरता है वो मरता है। जो अभी मरा हुआ दिखता है लेकिन वो पहले ही मुर्दा था, जिंदा उसमें नहीं होता तो उसी समय मुर्दा होता। कई बच्चों में से वो जिंदा हट जाता है तो मुर्दा हो जाते, किसी में से जिंदा थोड़े वर्षों तक रहा, किसी के अंदर 5 साल रहा, 10 साल रहा, इसमें 60 साल रहा, लेकिन है तो मुर्दा ही। मुर्दे में जिंदा जीत रहता है तो चलता है बस। इंजन अपनी जगह पर है, कार अपनी जगह पर है, इंजन थोड़ा अलग हो गया, इंजन पड़ा है अलग और कार अलग पड़ी है, दोनों का मेल से गाड़ी बन गई, अलग हुआ तो बोले गाड़ी मर गई, गाड़ी भी पड़ी है इंजन भी पड़ा है। तो ये संबंध से जीवन मानते हैं और संबंध विच्छेद को मृत्यु मानते हैं। वास्तव में कोई मृत्यु नहीं होती, कुछ नष्ट नहीं होता। जैसे अपने साधक थे गंगाराम जी, इनके पिताजी हॉस्पिटल में गए और उनकी बेवकूफी कहो डॉक्टरों की या कुछ भी कहो तो चल बसे, 73 साल के थे, 72-73 के थे ना। तो ऐसे ही अपने यहां जियालाल भाटिया करके आते वाड़े से, उनको भी हार्ट में कुछ हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो दूसरे भी मरीज थे, कुल 12 मरीज थे उस माहौल में। एंजियोग्राफी कराई और 12 को बोला कि तुम्हारा ब्लॉकेज है, ऐसा है, सीरियस है। 11 लोगों ने बायपास सर्जरी कराई। जियालाल भाटिया तो अपना आश्रम का संबंध था उसको, मेरे से पूछा मैं क्या नहीं कराना। तो अभी 80 साल का हो गया, 81 का, 9 साल हो गए उसको। वो तो हंसता खेलता नाचता है और जिन्होंने कराया उनको तो कईयों की तो लाचार स्थिति और कईयों को तो इंजन अलग, गाड़ी अलग हो गई, जीव अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। तो जब तक जीवन में सत्संग अच्छी तरह से आदमी नहीं समझता है तब तक ये उतार चढ़ाव जन्म मृत्यु आदमी को बहुत दुख देते हैं। मरा तो बाप है लेकिन बेटा रो रो के परेशान है कि अब मैं अकेला क्या करूंगा, इधर टेंशन क्यों झेलूं, मैं भी जाऊंगा पापा के पास। मरी तो पत्नी है, पति रो रहा है कि अब तेरे बिना क्या जीना, मैं भी आ रहा हूं। ये बिल्कुल गलत सोच है। आना कहां जाना कहां, व्यापक ब्रह्म आत्मा है वो तो ज्यों का त्यों है, चांद तो ज्यों का त्यों है, घड़े बनते हैं, पानी पड़ता है, पानी ढुलता है, पानी ढुल गया तो बोले चांद मर गया, चांद तो ज्यों का त्यों है, पानी ढुल गया, घड़ा भी ज्यों का त्यों है, पानी ढुल गया तो चांद नहीं देखा। ऐसे अंतःकरण चला गया, शरीर तो ज्यों का त्यों है, चैतन्य भी ज्यों का त्यों है, अंतःकरण चला गया, पानी हट गया तो घड़े में नहीं दिखेगा चांद। ऐसे अंतःकरण हट गया तो उसमें नहीं दिखता चेतना, फिर भी सामान्य चेतना है। एक चेतन, एक जीव नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया अंदर है। अगर नहीं होते तो शरीर फूलता कैसे, मुर्दे का, मुर्दे के खून के बूंद बूंद में कई जीव होते हैं, नहीं होते क्या? लेकिन जिसको उस शरीर से मैंपना होता है वो अंतःकरण निकल गया, बाकी तो सामान्य चैतन्य तो सब में भरपूर है, सामान्य जीव भी सब में भरपूर है। तो इस सृष्टि का कैसा चक्र है उसको समझना चाहिए। धार्मिक होना अलग बात है लेकिन धर्म के तत्व का ज्ञान होना अलग बात है। तीन प्रकार का ज्ञान चाहिए, एक तो आदि भौतिक जगत का, दूसरा आदि दैविक जगत का और तीसरा आत्मा का। आदि भौतिक जगत पांच भूतों से बना है, पांच भूतों में जी रहा है। आदि दैविक जगत उससे संयोग करता है तो जीवन मृत्यु होता है। लेकिन अध्यात्म जगत जहां से हम मैं बोलते हैं वो तो नित्य है, जो का त्यों है। तीन चीजें, एक घड़ा है, दूसरा पानी है और तीसरा चांद है। चांद तो जो का त्यों है, घड़े और पानी में परिवर्तन होता है। ये अपना चांद तो भले परिवर्तित हो लेकिन चांदों का चांद, जैसे आकाश, चांद की जगह पे आकाश मान लो, आकाश जो का त्यों है, घड़ा बनता है बिगड़ता है, पानी आता है खत्म होता है ढुलता है, उसमें आकाश ज्यों का त्यों है। पानी है तो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, पानी नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं है। ऐसे ये शरीर खोखा है, अंतःकरण पानी है और चिदानंद परमात्मा मैं हूं। तो मैं तो शरीर को भी जानता हूं, मन को भी जानता हूं, तो मैं नित्य हूं। ज्ञान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। लौकिक आदि भौतिक दुखों से भी बचाता है सत्संग, आदि दैविक प्रभावों से भी बचाता है सत्संग और आध्यात्मिक रस भी देता है सत्संग। इसलिए सत्संग का आश्रय करना चाहिए, आदर से सत्संग का श्रवण करने, मनन करे, नित अध्यासन करे। सत्संग जैसा कोई हितेशी नहीं है, 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, 1,00,00,000 काम छोड़कर हरि का भजन कर लेना चाहिए, हरि का ज्ञान भर लेना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन च चतुर भी एतद पशु भी नराणाम। खाना मुसीबत आए तो डर जाना, निद्रा करना, मैथुन करना, ये तो कुत्ते घोड़े गधे खटमल मच्छर ये सब ये लोग जानते हैं। धर्मो ही एक अधिको नराणाम, धर्म ही मनुष्य के लिए विशेषता है। अगर धर्म का फायदा नहीं लेते तो वो पशु है। धर्म लाभ लिया होता तो दुख के प्रसंग में इतना दुखी नहीं होता कि रोना पड़े। काहे को रोना, और रोने से वो मृतक जिंदा भी नहीं होगा। रोने से तो अपना दिल भी दुखी होगा और उसका भी। एक माई थी, फियाट गाड़ी में जा रही थी मथुरा से वृंदावन। तो मथुरा में रिफाइनरी है गवर्नमेंट की, फिल्टर प्लांट पेट्रोलियम का। तो टैंकर आते जाते, फास्ट टैंकर होते हैं, टैंकर ने कुछ झोंका खाया, कुछ हुआ, फियाट के साथ टैंकर टकराया। बताओ फियाट की क्या हालत है। ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे मर गए, पति मर गया, भाई पीछे बैठी थी, एक बेटा था किसी झोपड़पट्टी वाले का। वो भाई मर गई थी तो लावारिस बेटे को भाई ने गोद में लिया था, धर्मात्मा भाई थी, उड़िया बाबा संत हो गए, नाम सुना होगा उनकी, वो भक्त थी। तो पति की लाश दिखी, बेटे की लाश दिखी, 2 बेटे, ड्राइवर, और गाड़ी तो एकदम बिस्किट हो गई। बताओ उस माई से क्या गुजरी होगी। आगरे के हॉस्पिटल में एडमिट हुई, साल भर बेड रेस्ट, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, फिर नहीं सकती, सोते सोते सब सिंगल डबल की जो भी क्रिया है, क्योंकि 3 फ्रैक्चर हुए रीढ़ पे, रीढ़ की हड्डी पे। तो जो लोग सुनते तो दुखी होके आते और भाई उनको सत्संग सुनाती कि इसमें रोने की क्या जरूरत है, और हंसते हंसते उनको सत्संग सुनाते सुनाते हंसते हंसते वापस भेजते। जब अमेरिका का उसका रिश्तेदार गया आगरे के हॉस्पिटल में, तुम्हारे से जुलम हो गया, 2 बेटों की लाश तुमने देखी, पति की लाश तुमने देखी, ड्राइवर की लाश देखी, साल भर से बेड रेस्ट पे, तुम्हारे जैसा कहर तो किसी ने नहीं सहाय करके रोने लगा। भाई ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, मैं तो हंस रही हूं। पति की लाश देखी, मैंने कहा ये तुम नहीं हो, मरने वाला शरीर तुम नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो, बच्चों को भी ऐसी सदगति दी, सत प्रेरणा दी, और पीड़ा हुई तो शरीर को ही है, दुखी होता है तो मन होता है, मैं तो उसको जानती हूं, मैं तो जानकर आनंद ले रहे हूं, और तुम आके दुखी हो रहे हो, और तुम तो अभी आखिरी दिनों में आए, अभी तो साल भर पूरा हुआ है, कल या परसों मुझे डिस्चार्ज कर देंगे, फिर मैं घर चली जाऊंगी, चल फिर सकूंगी, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। अगर जैसे तुम मेरे को सुनकर दुखी हुए हो ऐसा मैं दुखी होती तो मैं तो पागल हो जाती। ये तो मनुष्य जीवन की बुद्धि का महत्व है कि आदि भौतिक को आदि भौतिक जाने, आदि देविक को आदि देविक जाने, और अध्यात्म अपना आपा तो नित्य है, मर जा मरने के बाद इधर जाऊं उधर जाऊं काहे को जाएंगे, अमर व्यापक को पहचान के मुक्त हो जाएंगे। टेंशन से भागेंगे तो टेंशन पीछा नहीं छोड़ेंगे, कुत्ते से तुम डर के भागो तो कुत्ता पीछा नहीं छोड़ेगा। कई लोग टेंशन से भागते हैं, दारू पीते तो क्या टेंशन मिटता है, नहीं, टेंशन से सुसाइड करते तो क्या टेंशन मिटता है, बढ़ता है। टेंशन से मर जाऊं तो फिर क्या, हर जन्म में ऐसी कायरता आएगी। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी भूल कर भी मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इससे तो मैं मर जाऊं, दुख तो चले जाएगा, परेशानी तो चली जाएगी, मैं मर जाऊं ये संकल्प कायरता ला देगा, फिर हर जन्म में ऐसी गंदी आदत पड़ जाएगी। अपने को स्याणा समझता लेकिन बड़ी भारी गलती है। क्या करें, मैं जीकर टेंशन क्यों सहूं, टेंशन किस बात का है, संसार है, स्वप्न है, चलता रहता है ऐसे। टेंशन तब करते जब सत्संग का आदर नहीं, जो सत्संग नहीं समझते सत्संग नहीं करते उन्हीं को टेंशन दबाता है, ये तो टेंशन की तो बात ही नहीं, टेंशन किस बात का। स्थूल स्थूल है, सूक्ष्म सूक्ष्म है और ब्रह्म ब्रह्म है। लीला हो रही है नित्य। समुद्र समुद्र है, बुलबुला बुलबुला है, तरंग तरंग है, भंवर भंवर है, लेकिन वास्तव में पानी पानी है। वास्तव में सब वासुदेव की लीला है, इसमें टेंशन किस बात का है? ये सत्संग का आदर नहीं है, ज्ञान का आदर नहीं है, सत्कर्म का आदर नहीं है। कमाई का 10% दान पुण्य करना चाहिए, नहीं तो लोभ हावी हो जाता। ऐसे समय का 10% ध्यान भजन में सत्संग में लगाना चाहिए। जो ये गलती करते हैं उनको फिर थोड़ा दुख भी बड़ा हो जाता है। कमाई का 10% सत्कर्म में और समय का 10% साधना में। जो लोभी होते हैं उनको छोटा दुख भी बड़ा हो जाता है, अहंकारी को भी छोटा दुख बड़ा हो जाता है, मोही को भी छोटा दुख बड़ा हो जाता है, निगुरे लोगों को भी छोटा दुख बड़ा हो जाता है, और साधक को बड़ा दुख भी कुछ नहीं। पति मर गया, बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, गाड़ी बिस्किट हो गई, खुद बेड रेस्ट पे है लेकिन माई हंस रही, ये भी तो एक समझ है ना। अगर वो रोती दुखी होती तो क्या पति जिंदा हो जाता है या बच्चे जिंदे हो जाते या खुद ठीक हो जाते? वो तो एक साल में ठीक हो गई, नहीं तो न जाने कितने साल में विकलांग होके निकलती बाहर। इसलिए समझ का आश्रय लेना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, दान पुण्य का आश्रय कर लेना चाहिए, सत्कर्म करते रहे। कमाया है फिर छोड़ के मर जाए, अपने हाथ से सत्कर्म करते रहे, उसका आनंद ले, उसका ज्ञान ले। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। कंजर भी इधर सुधर जाते हैं, यहां कंजरों की भट्टी होती थी और पुलिस वाले उनसे अपता लेने आते तो वो डंडा लेके पुलिस वालों को मारने भागते कि तुम्हारा एसपी खाता है, तुमको भी दिया, फिर इधर दारू पिलाया, ऊपर से पैसा लेते, तुम्हारे खबर लेते, तो पुलिस वाले भाग के इधर आश्रम में घुस जाते, फिर कंजर बाहर रहते। उन दिनों में इतनी भीड़ नहीं थी तो मैं ऐसे घूमता, बाबा इनको बाहर निकालो, फिर पुलिस वाले घुस गए तुम्हारे आश्रम में, हमारे से हफ्ता मांग रहे, बाहर निकालो तो मैं इनको डंडे मारेंगे, अच्छा हफ्ता देंगे। मैं बोला नहीं, अभी हमारी शरण आए, तुम चले जाओ। समझाए तो कंजर मान गए, शराब बनाने वाले कंजर इधर थे, छारा भी थे और कंजर भी, छारों की 40 बच्चियां रहती थी इधर, वो भी बेचारे चले गए वहां, उधर कंजर करते थे बाद में, और पुलिस वाले पिए भी और ऊपर से पैसे मांगे, तो उनको गुस्सा आया कि हम तो ठंडी रात में सुकड़ते रहते हैं, एसपी को देते हैं, अदालत वालों को देते हैं, अब तुमको भी देते। मैंने कहा फिर दारू भी पिला, ऊपर से पैसे मांगते, तुम्हारी खबर लेंगे। तो अरे आकल की तो सब आए डंडे लेकर, पुलिस वाले 3-4 थे, वो तो जान बचा के आश्रम में घुस गए। तो फिर मैं आगे आ गया, तो कंजर भी मेरी बात मानते। मंगल में जीवन मृत्यु पढ़ना चाहिए, कोई मर गया हो तो फिर उसका भी मंगल हो, अपना भी मंगल हो। और मृतक व्यक्ति के जीवन में तुलसी की लकड़ियां उसकी सदगति कराती, अग्नि संस्कार तुलसी की लकड़ी से हो, कैसी व्यवस्था हो, चाहे डॉक्टरों ने बेवकूफी की चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी गति तो ऊंची हो गई, इस बात की खुशी करो। और क्या है, नालायकी डॉक्टरों की है, लेकिन अपने तरफ से तो अपन सेवा किया है, अपन पैसा खर्चने में उनका इलाज करने में अपने कमी रखी हो तो रो, अपने तरफ से तो कोई कमी नहीं। आप बेवकूफी डॉक्टरों की है, वो क्या करें, हम भी बेवकूफ बन के रोते रहें तो नहीं चलेगा ना। चलो जो हुआ, मरा कुछ भी नहीं, शरीर में जो जल तत्व था वो बाष्पीभूत हो गया, वायु तत्व वायु से मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, बाकी पृथ्वी तत्व था वो राख और हड्डियां बची रही। मरा क्या, कठा हुआ था वो अलग अलग हो गया, महाभूत में मिल गया, जलीय अंश से बना था शरीर में से, हमारे शरीर में जल अंश है ना, जला देंगे तो जल जल में मिल जाएगा, बाष्पीभूत होकर वायु वायु में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगा, व्यापक में आकाश आकाश में मिल जाएगा, बाकी पृथ्वी का हिस्सा रहेगा वो हड्डियां और आंख में। मिटता तो कुछ भी नहीं, एक राई का दाना तुम नहीं मिटा सकते, बालू का एक दाना तुम नहीं मिटा सकते। बोले मिटा दूं, उसको घिस के ओझल कर दोगे लेकिन उसके कण वातावरण में रहेंगे। फूंक मार के राई के दाने को अथवा बालू के दाने को आप चूरा कर देंगे, फूंक मार के ओझल कर देंगे लेकिन उसका अस्तित्व नाश नहीं करेंगे। अस्तित्व तो जो का त्यों है सबका, स्थूल शरीर का भी अस्तित्व है व्यापक में और आत्मा का भी अस्तित्व है और जीव भी नित्य है, इसमें मरा क्या है। पहले तो लोगों को लगा कि ये संत कैसे पागलपन की बात करते हैं, लेकिन जब सत्संग सुना तो लोगों को लगा कि हम ही पागलपन के कारण परेशान हो रहे हैं। मरता कुछ भी नहीं है, परिवर्तन होता है। फायरे हाय तरंग मर गया लेकिन वो पानी में गया, फिर बुलबुला होगा, पानी मरा बर्फ हो गया, बर्फ मरा तो बाष्पीभूत हो गया, बाष्प मरा तो पानी हो गया। एक बूंद पानी की घुटती नहीं है, घट नहीं होती, लेकिन बोले पानी चला गया तो बाष्पीभूत होकर फिर कहीं बरसेगा। ऐसे पंच भौतिक पांच भूतों में बनता है, बिगड़ता है। बिगड़ना क्या है, परिवर्तन होता है, सब अपनी लीला है, नित्य लीला हो रही है। इस लीला को तो भगवान राम भी नहीं रोक सकते। राम के होते ही कौशल्या जी को विधवा होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? कृष्ण के होते हुए कृष्ण के बेटों को मरना पड़ा ना? ये तो होता रहता संसार है, इसमें क्या। मृत गाय दिया जीवन दाना, तो फिर अपने सामने ही गुरु जी गए तो कुछ नहीं हुआ, सहना पड़ा। नहीं तो हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारे सामने गुरु जी चला जाए, ऐसा थोड़ी हम पसंद करेंगे। लेकिन पसंद करो ना करो ये नियति है, तो स्वीकार ही करना पड़ा, हम नहीं रोए। लाखों पिताओं की बराबरी, लाखों पिता सदगुरु की कृपा के आगे बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा सदगुरु हमारी गोद में आखिरी श्वास लिया, फिर भी हम नहीं रोए। रोने से क्या होता है, दुखी होने से क्या होता है? उनके सिद्धांत उनके आदेशों का सेवा हो रही है, वह आनंद है। पालनपुर में शरीर छोड़ा गुरु जी ने, जो उनकी सेवा करता था वो मेरे को भगाना चाहता था, लेकिन कुदरत क्या, उसको उसी समय डबल लगा। और डबल लगा नहाने में एक दो घंटा उधर ही गया और मेरे गोद में गुरु जी ने आखिरी यात्रा कर ली। और जो लेना देना था नजरों से मेरे को दे गए, वो तो रह गया। जो मेरे को भगाना चाहता था वो तो रह गया। तो किसी को भगाने का क्यों सोचे, किसी से वैर क्यों रखे, किसी का बुरा क्यों सोचे, सब संसार है, धर्मशाला है। मधुबीति जैसे दू स्वप्न से जगत जा रहा है, बदल रहा है, क्या मांगे, कुछ स्थिर रहता नहीं। ये मिल गया, वो मिल गया, आखिर क्या, ये पा लिया, ये पा लिया, आखिर क्या, सब छूटने वाला। तो इसको बोलते प्रतीति, जगत प्रतीति मात्र है, प्रतीत होके बदलता है। और परमात्मा की प्राप्ति होती है, जगत की प्रतीति होती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा नित्य है, उसकी प्राप्ति होती है। अनित्य जगत की प्रतीति होती है, अब ये आया मिल गया, लेकिन प्रतीति है, कितना भी संभालूंगा नहीं रहेगा, रहेगा ये गजरा रह सकता है, कितना भी संभाले नहीं रहेगा। ऐसे शरीरों को कितना भी संभालो, संबंध को कितना भी संभालो, वो होके बदलने वाला। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। अपना तन अपना मन अपना जीवन किसी के काम आए। स्त्री को पति के अधीन अगर गुरु कर दिया है तो गुरु के देखरेख में रहे। समझो गुरु भी नहीं है, पति भी नहीं है, विधवा हो गई है तो पुत्रों के देखरेख में रहे। अकेली स्त्री को मनमुख नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसका पतन अवश्य भावी। शास्त्र में नियम है, स्त्री भाई छोकरी हो तो माँ बाप के देखरेख में रहे, शादी हो तो पति के देखरेख में रहे, पति ससुराल आदि। समझो पति भी चले गए ससुरा भी चले गए तो पुत्रों का कर्तव्य है माँ का पालन पोषण करे और पुत्रों की देखरेख में रहे, मनमाने निर्णय नहीं करे। उचित निर्णय है तो पुत्र उसके पूरे करे, बाकी किसी की बातों में आकर विदेश चलो इधर चलो उधर चलो तो नहीं जावे। आत्म साक्षात्कार हो जाए तो परम स्वतंत्र, उसके पहले कोई जिसको कोई कहने वाला नहीं है, मनमाना निर्णय करता, उससे बड़ा कोई अभागा ही नहीं है। एक बार राम जी ने कह दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने कहा प्रभु कुटीर कहाँ बनाए, बोले जहां तुमको ठीक लगे जा बनाओ। तो लक्ष्मण खूब रोए, लक्ष्मण का रुदन सुनकर सीता जी को दया आई, भैया भ्राता क्यों रो रहे हो क्यों रो रहे हो? बोले आज मेरा मैं अनाथ हो गया। क्यों अनाथ कैसे हुए? बोले प्रभु ने कहा कि जहां तुमको ठीक लगे वहां बनाओ, तो मैं मन के हाथ में आ गया, मेरे को कोई कहने वाला नहीं रहा, जहां मेरे को ठीक लगे। तो मन को तो जो ठीक लगता है विकारों में घुमाता है, मैं आज अनाथ हो गया, प्रभु ने अपना हाथ हटा दिया मेरे ऊपर से। सीता जी ने जाकर राम जी को कहा कि तो लक्ष्मण रो रहे हैं, आपने बोला तुझे जहां ठीक लगे करो। तो बोले नहीं नहीं ये मेरी गलती है, लक्ष्मण आओ देखो तुम इधर नहीं बनाओगे इधर नहीं बनाओगे, पूर्व का प्रकाश मिले दक्षिण की हवा मिले ऐसी जगह पे अच्छी तरह से कुटिया बनाना, तुम कैसी बनाते हो मैं देखने को आता हूं। तो बाजी सुधर गए, नहीं तो लक्ष्मण रो रहे थे। आजकल मूर्ख लोग खुश होते हैं चलो अपने मन से करो, धोखाधड़ी करके खिसक गए तो वो तो तबाह हो जाते, ऐसे लोग आवारा होके भाग भी जाते। कोई ना कोई कहने वाला लगाम हो हमारे हितेशी की, हितेशी की लगाम नहीं होगी तो दुश्मन नकेल डाल देंगे, हितेशी की लगाम होगी तो ये दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वासना अज्ञानी सब दुश्मन है। इन दुश्मनों से बचाने वाला तो माता पिता और गुरु की लगाम होती है, और माता पिता ज्ञानी हो तो बढ़िया बात है। भगवत प्राप्ति हम क्यों करें, भगवान का भजन क्यों करें? हम रस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सदा आनंद रहे वो चाहते हैं, तो सदा रस सदा आनंद जिसमें है उसका नाम भगवान है, और जो जरा सा रस जरा सा आनंद आके दुख और मुसीबतें दे उसका नाम संसार है। जैसे शरीर को श्वास क्यों लेते हैं? एक वकील ने गांधी जी को कहा कि तुम प्रार्थना कितनी बार करते हो? बोले दो बार तो पक्की, आधा आधा घंटा एक घंटा। बोले एक घंटा प्रार्थना में तुम लगाते हो तो एक घंटा अध्ययन करो और कोई काम धंधा करो बिजनेस करो वकालत करो तो कितनी कमाई होगी? तो गांधी ने पूछा कि वकील तुम भोजन कितनी बार करते? बोले तीन टाइम सुबह दोपहर शाम। तो कितना टाइम जाता है? बोले सवा डेढ़ घंटा जाता है। तो काय को भोजन करते है? उतना पैसा भी बच जाएगा टाइम भी बच जाएगा। बोले भोजन के बिना कैसे चलेगा? अरे बोले बुद्धू वकील, जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं ऐसे चित्त भगवान के भजन बिना व्यर्थ हो जाता। भगवत प्रार्थना से ही चित्त को बल मिलता है, और इतना बल मिला कि अंग्रेजों को भगा दिया। तो भगवत ध्यान भगवत साधना से एक आदि दैविक बल आता है, और आगे बढ़े तो अध्यात्म बल की प्राप्ति हो जाती है, अध्यात्म अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। दुख नहीं चाहते ना, फिर दुख होता है, लोग भाग जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तलाक देते हैं, ये सब काय को करते हैं? भगवत उपासना नहीं है इसीलिए, नहीं तो भगवत उपासना का रस इतना मधुर है कि चाहे कितना भी, तिलक की पत्नी कितनी बुद्धू थी तो भी चला लिया, किसी का पति कैसा भी था चला लेते हैं। जिनको भगवत रस होता है वो उत्पात नहीं करते इतना ज्यादा, जिनके जीवन में भगवत रस नहीं होता उनको भटकने की रुचि होती है, अपना नाम करने की रुचि, अपना फोटो छपवाने की रुचि, अपना धंधा करने की रुचि, अपने चमचे चमची बनाने की रुचि, भगवत प्राप्ति वाला तो दबंग होता है। और हमको गुरुजी ने शिष्य नहीं बनाया, हमको नहीं बुलाया, हम जाके बने थे। भगवत प्राप्ति हो गया तो वो रसमय जीवन हो जाता है, सुखकारी हो जाता है, विलक्षण लक्षण आ जाते हैं बुद्धि में, निष्फिक्रता आ जाती है, तटस्थता आ जाती है, बीते हुए का शोक नहीं होता, वर्तमान के विकारों से दबता नहीं और भविष्य के भय से भयभीत नहीं होता, उद्दंड आचरण नहीं करता, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक चिंता साधारण जीव को दबाती, लेकिन ज्ञानी के आगे वो सब दबके रहते। भगवत ज्ञान ऐसी चीज है। भगवत प्राप्ति का मतलब है मनुष्य की चाह की पूर्ति। मनुष्य चाहता है मैं सुखी रहूं, सदा रहूं, शाश्वत रहूं। भगवान 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 का नाम दूसरा ही रख दो, जो मनुष्य की मांग है उसी का नाम भगवान है। भगवान जिसे भरण पोषण हो, भरण पोषण तो चाहते हो, जिसे गमनागमन हो वो भी चाहते हो, जिसे वाणी स्फुरित हो वो भी चाहते हो। सब मिट जाए फिर भी हमारा सुख न मिटे, आनंद न मिटे, स्वतंत्रता न मिटे, माधुर्य न मिटे, ये चाहते हम। हमारी सचमुच मांग का नाम है भगवान। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में अंतरात्मा है। भगवान का भजन नहीं करें तो भी शरीर तो चलेगा, लेकिन भजन में जो रस आएगा, जो समता आएगी, जो उदारता आएगी, जो जीवन शैली आएगी, वो भगवान को छोड़कर जीवन शैली वो नहीं बनेगी, आसुरी बन जाएगी, राक्षसी बन जाएगी। तो कुछ स्वर होते हैं, सुर होते हैं देवता स्वभाव के, कुछ असुर होते हैं, कुछ दैत्य होते हैं, कुछ दानव होते हैं। ऐसी वृत्ति हो जाएगी मनुष्य शरीर में, दैत्य दानव आसुर वृत्ति। पर विजय पाना है तो भगवत आश्रय, भगवत नाम, भगवत सत्संग, भगवत प्रीति, भगवत स्मृति जितनी ज्यादा आएगी उतना वो शुद्ध सुख में टिकेगा। चैतन्य रूप ओम। जो लोग सोचते हैं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, वे अपना बहुत भारी नुकसान करते हैं। दुख और परेशानी तो मर जाती है, लेकिन दुखी हूं परेशान हूं ये आदत बनी रहती है, तो मृत्यु के समय कुछ न कुछ होती है परेशानी दुख, तो शरीर तो मर जाएगा, परेशानी भी मर जाएगी, लेकिन मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं ऐसा लेके जाएगा तो परेशान रहेगा। इसलिए मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, मैं दुख को जानता हूं, परेशानी को जानता हूं, ये तो आते जाते हैं, मैं सदा हूं सदा वाले का हूं। इससे बड़ा भारी लाभ होता है। चाहे भगवान को ना भी मानो, कम से कम अपने को दुखी और परेशान तो मत मानो। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं पापी हूं, मैं धनी हूं, ये सब तुच्छ मान्यता तुच्छ गति कर देगी। मैं साक्षी हूं, चैतन्य हूं, परमात्मा का हूं। परमात्मा आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, हर परिस्थिति में आत्मा परमात्मा ज्यों का त्यों है। ये ज्ञान जितना फायदा करेगा उतना करोड़ों अरबों रुपए भी फायदा नहीं करेंगे, और 60,000 वर्ष तपस्या भी उतना फायदा नहीं करेगी जितना ये ज्ञान फायदा करेगा। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं प्रिय उद्धव, थोड़ा सा भी आत्मज्ञान जीव का जो भला करता है वो बड़ी बड़ी तपस्या और यज्ञ और व्रत और उपवासों से नहीं होता। यस्य ज्ञानमयम् तपः, ज्ञान संयुक्त तप। जिस संसार बंधन से छूटते हो उसका पोल तुम्हारे को ज्ञान होना चाहिए। संसार अनित्य है, नश्वर संबंध है। कितनी भी पत्नी प्रिय है फिर भी पति से कुछ छुपा दी, कितना भी पति प्यारा है फिर भी शरीर में हाड़ मांस मल मूत्र भरा है, ये संसार का पोल। बिना गंदगी के संसार का सुख नहीं दिखता। वाइन पियो तो कितने, बियर पियो तो कितने जंतु का मौत का रस शराब में, ऐसे ही पेप्सी ये वो पियो तो क्या क्या गंदी चीजें पड़ती है। शरीर पति पत्नी का शरीर में भी तो गंदगी छुपी है, वे थूक वे लीट वे हार्ड मास, संसार का भोग गंदगी से भरा है और वाह वही अहंकार से भरी है, चिंता बेवकूफी से भरी है। लेकिन भगवान तो शुद्ध बुद्ध है, चैतन्य रूप है, आनंद है, वहां न गंदगी है, न शोक है, न दगा है, न कुछ, सरल स्वभाव। पिक्चर देख के सुखी होना चाहते हुए पिक्चर बाज बहुत दुखी हो जाते, सिगरेट पीकर जो सुखी होना चाहते, पान मसाला खा के जो सुखी होना चाहते, वो अपने साथ बड़ी भारी दुश्मनी करते। लेकिन जो भगवान का ध्यान करके असली सुखी होते हैं वे धनभागी, अपना और दूसरों का भला करते। भगवान आप आनंद रूप है, आप मेरे हैं, सुख रूप है वापिस, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु ज्ञान स्वरूप, प्रभु आनंद स्वरूप, प्रभु चैतन्य स्वरूप, प्रभु सुख रूप। ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 ग्लोबल प्रोडक्ट और मैनेजर यहां जख मार रहे हैं, इनके आगे लोग जख मारते हैं, ये यहां जख मार रहे हैं। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे मेरे ओम रामा ओम श्यामा ओम शिवा हरि शंभो बोले गुरु रामा श्यामा आनंदा अच्युता गोविंदा गोपाला अनंता जय हो। जिसको जाना है जाता है, प्रभु बोला है पता नहीं ये बिचारों के शिकायत तुम मौज मारे बोला है बिचारे डायो सारा करता हूँ इन्हें बता रहे बात करूँ कैसे। ओम हरि ओम 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 प्रभु
ओम 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 रामा बदु ब्रह्म बदु नजरों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते हैं। ओम प्रभु ओम 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 ब्रह्मवेताओं की नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बदल जाती चमचियों की। ओम ओम हरि ओम 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 रामा श्यामा ओम 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 शिवा जय हो आनंद देवा माधुर्य देवा परमात्म देवा चैतन्य देवा सच्चिदानंद देवा Oh.